नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज नवनिर्वाचित सांसदों के सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने के साथ शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार देश की सेवा करने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करेगी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दक्षिण भारत में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज सुपर 8 मुकाबले में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज नवनिर्वाचित सांसदों के सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने के साथ शुरू हुआ। लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले प्रथम सदस्य रहे। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने श्री मोदी को शपथ दिलाई। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक सदन की कार्यवाही चलाने में श्री महताब की सहायता के लिए नियुक्त अध्यक्ष को पैनल की शपथ दिलाई गई। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते ने चेयरपर्सन पैनल के सदस्य के रूप में शपथ ली। हालांकि कांग्रेस सांसद के सुरेश, डीएमके सांसद टीआर बालू और टीएमसी के सुदीप बांदोपाध्याय ने पैनल के सदस्य के रूप में शपथ नहीं ली। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, मनोहर लाल, पीयूष गोयल, जितन राम मांझी, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, डॉ वीरेंद्र कुमार, किरेन रिजिजू, चिराग पासवान और अन्य ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और प्रहलाद जोशी ने कन्नड़ में शपथ ली, जबकि धर्मेंद्र प्रधान और ज्वेल ओराम ने उड़िया भाषा में शपथ ली। एक अन्य केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने असमिया में और केंद्रीय मंत्री के राम मोहन नायडू और जी किशन रेड्डी ने तेलुगु भाषा में शपथ ली। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने गुजराती भाषा में शपथ ली। वहीं प्रताप राव यादव ने मराठी और डॉ जितेंद्र सिंह ने डोगरी भाषा में शपथ ली। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने मलयालम और सुकांता मजुमदार ने बंगाली भाषा में शपथ ली। केंद्रीय मंत्री दुर्गा दास उके ने संस्कृत में शपथ ली। सदन में अभी नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ और प्रतिज्ञान की प्रक्रिया चल रही है। सभी सांसद अपने अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों के क्रम में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 18वीं लोकसभा का सत्र आज विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देश की सेवा करने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करेगी। सत्र से पहले संसद के बाहर मीडिया को जानकारी देते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार चलाने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन देश चलाने के लिए आम सहमति अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सबको साथ लेकर और संविधान की पवित्रता को बरकरार रखते हुए तेजी से फैसला लेना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार लोकसभा सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह नए संसद भवन में हो रहा है। श्री मोदी ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी मतदान प्रक्रिया भव्य और शानदार ढंग से संपन्न हो चुकी है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दूसरी बार देश की जनता ने किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता विपक्ष से उचित आचरण करने की आशा करती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वे विपक्ष लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। श्री मोदी ने कहा कि देश को एक जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। उन्होंने विश्वास जताया कि 18वीं लोकसभा के सांसद आम जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, जमाखोरी तथा सट्टेबाजी को रोकने के लिए केंद्र ने राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के थोक और खुदरा व्यापारियों पर गेहूं के भंडारण के लिए सीमा निर्धारित की है। नई दिल्ली में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए यह सीमा 3000 टन होगी। खुदरा विक्रेताओं के प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए यह सीमा 10 टन और उनके डिपो के लिए यह सीमा 3000 टन होगी। श्री चोपड़ा ने कहा कि यह सीमा 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। उन्होंने उन सभी मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया जिनमें यह बताया गया था कि देश में गेहूं के भंडार की कमी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का दावा करने वाले एक संदेश को फर्जी करार दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दक्षिण भारत में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर के कुछ और हिस्सों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड की ओर बढ़ चुका है। अगले कुछ दिनों में मॉनसून की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात और अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के बहुत से स्थानों पर आज बादल गरजने, बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में अगले 5 दिनों के दौरान बादल गरजने, बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में अगले 5 दिनों तक बहुत तेज वर्षा की स्थिति बनी रहेगी। इस बीच आज और कल पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके बाद स्थिति में सुधार होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अपने कार्यकाल की दूसरी आधिकारिक यात्रा की। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात की विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। उन्होंने नए क्षेत्रों में परस्पर सहयोग तथा आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इससे पहले श्री जयशंकर ने लोअर संग्रहालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। उन्होंने अबू धाबी स्थित स्वामीनारायण मंदिर का भी दौरा किया। कांग्रेस ने आज नीट परीक्षा, पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना के साथ साथ महंगाई के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। पार्टी अध्यक्ष मल्लिक अर्जुन खड़गे ने सरकार पर इन मुद्दों पर चुप रहने का आरोप लगाया। संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए पार्टी सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार संविधान को कमजोर कर रही है, इसलिए संसद सत्र के पहले दिन विपक्षी सांसद अपने हाथ में संविधान की प्रतियां लेकर पहुंचे। गुजरात के गोधरा में एक परीक्षा केंद्र पर नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीमें गोधरा पहुंची है। 5 मई को परीक्षा आयोजित होने के 3 दिन बाद इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गोधरा में लगभग 30 विद्यार्थियों को उनके प्रश्न पत्र हल करने में मदद करने में कथित भूमिका के लिए पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बीच गुजरात में पंचमहल जिला अदालत के सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। नीट पेपर लीक मामले में जांच लातूर तक पहुंच गई है। इस मामले में जिला परिषद स्कूल के 2 शिक्षकों संजय तुकाराम जादव और जलील कुमार खान पठान को कल रात गिरफ्तार किया गया। लातूर के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में इराना मसनाजी कोंगलवार और दिल्ली के गंगाधर नामक युवक समेत कुल 4 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बिहार पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने बताया कि नीट यूजी परीक्षा का प्रश्न पत्र झारखंड के हजारीबाग से एक पेशेवर गिरोह ने लीक किया था। मामले की जांच अभी जारी है। एक प्रेस विज्ञप्ति में आर्थिक अपराध इकाई ने कहा कि पेपर लीक मामला राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा निर्धारित परिवहन, भंडारण, हैंडओवर और टेकओवर की मानक संचालन प्रक्रिया में छेड़छाड़ के कारण हुआ। शिक्षाविद डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने बताया कि नीट पेपर लीक मामले में सरकार ने तत्परता से कदम उठाते हुए तेज कार्रवाई की। सरकार अभ्यर्थियों के हित में कार्रवाई कर रही है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज तमिलनाडु में जहरीली शराब त्रासदी से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा। श्री खड़गे को लिखे पत्र में श्री नड्डा ने कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि पार्टी ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने कहा है कि रफा के खिलाफ दक्षिण गाजा में कल चल रहे युद्ध का दौर लगभग समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा है कि ये युद्ध अभी हमास के पूरी तरह सत्ता में से हटने तक चलेगा। एक टेलीविजन साक्षात्कार में श्री नेतान्याहू ने कहा है कि इजरायली सेना जल्द ही लेबनान के साथ सीमा पर तैनात होगी। ये वही स्थान है जहां हिजबुल्ला की गोलीबारी बढ़ रही है। टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज सुपर 8 मुकाबले में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।